ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 14। सुकोवाचा एवं अश्रद्धितं शिष्यं अनादेशकरं गुरु सशापदैव अपराहितः सत्यसंधं मनस्विनं। श्रीशुक उवाच एवं अश्रद्धितं शिष्यं अनादेशकरं गुरु सशापदैव अपराहितः सत्यसंधं मनस्विनं। श्रीशुक उवाच एवं अश्रद्धितं शिष्यं अनादेशकरं गुरु सशापदैव अपराहितः सत्यसंधं मनस्विनं। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार अश्रद्धितं गुरु के आदेश का आदर न करने वाले शिष्यं शिष्य को अनादेश करं, जो अपने गुरु के आदेश का पालन करने को तैयार न था। गुरु शुक्राचार्य ने सशाप साप दिया। दैव प्रहित भगवान से प्रेरित होकर सत्य संधम जो सत्य पर अडिग रहे, मनस्विनम जिसका चरित्र अच्युत था। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने महान शिष्य बलि महाराज को साप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। तात्पर्य सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। बलि महाराज तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के आचरण में यही अंतर था कि बलि महाराज में तो पहले से इस प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु नैतिक कर्मकांड मात्र के पुरोहित होने के कारण शुक्राचार्य में ऐसा नहीं हो पाया था। इस प्रकार शुक्राचार्य को भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि भक्ति विकसित करे। भगवद गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में स्वयं भगवान ने कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयन्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जो भक्तगण सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें प्रेरित करने वाले भगवान हैं। वैष्णव जन कभी भी कर्मकांडी स्मार्ट ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते, इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, क्योंकि वैष्णव जन स्मार्ट विधि का कभी पालन नहीं करते। यद्यपि भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता और जब तक वह भक्ति में निरत नहीं होता तब तक उसे सही उपदेश प्राप्त नहीं हो पाता जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होते हैं। अतएव इस श्लोक में देव प्रहित शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रेरित होकर। शुक्राचार्य को चाहिए था कि वे बलि महाराज को प्रोत्साहित करते कि वे भगवान विष्णु को सर्वस्व दे दें। यह भगवत प्रेम का लक्षण होता। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टे उन्होंने अपने भक्त शिष्य को साप देकर दंडित करना चाहा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं सभी से आशीर्वाद की याचना करते हुए कि इस महत्वपूर्ण प्रसंग पर कुछ बोल सको अपने शुद्धिकरण हेतु। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज के ये जो श्लोक है, जब इसका अनुवाद अगर पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने महान शिष्य बलि महाराज को साप दे दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि शुक्राचार्य जो है किन से प्रेरित होकर, भगवान से ही प्रेरित होकर जो है किनको साप दिया, बलि महाराज को। केवल ये चीज लग सकता है कि जो भगवान ही, केवल ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी घट रहा है या कहीं भी संसार में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है, भगवान का ही है, सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं। और अगले लाइन में कह रहे हैं, अगले लाइन में सुखदेव गोस्वामी बलि महाराज के बारे में बता रहे हैं, बलि महाराज के बारे में कह रहे हैं कि वे इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे, इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि वे अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। कह रहे वो इतने सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु की आज्ञा, सत्यनिष्ठ का क्या मतलब है, कोई गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु को माने। लेकिन कह रहे हैं कि वो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। तो ये वाक्य जो है कई बार ऐसे, जैसे कल का भी श्लोक था, इस तरह से बलि महाराज कह रहे थे कि मैं भगवान को ऐसे मार दूं या भगवान मुझे मार दें। तो वास्तव में जो है ये जो ग्रंथ भागवत है इसको समझने के लिए किसकी आवश्यकता है, व्यक्ति भागवत की। एक व्यक्ति भागवत के आशीर्वाद से ही, उनके मार्गदर्शन में ही जो है हम इस ग्रंथ को समझ सकते हैं। और ये हमारे लिए व्यक्ति भागवत कौन है, श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने कि इतना अच्छा तात्पर्य दिया, इतना अच्छे ढंग से हमें किसी भी श्लोक को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बलि महाराज जो है बिल्कुल सत्यनिष्ठ थे। तो कैसे सत्यनिष्ठ थे, जैसे कि हम जानते हैं कि किस तरह से भगवान जो है विष्णु वामन रूप में आए और उन्होंने बलि महाराज से जो है तीन पग जमीन मांगा, और बलि महाराज जो है देने के लिए तैयार भी थे, बिल्कुल एग्री थे, लेकिन उनको किन्होंने रोका, उनके गुरु शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य उनको कह रहे थे कि देखो ये तो स्वयं भगवान विष्णु हैं और ये कह तो रहे तुमको कि सिर्फ तीन पग जमीन चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी तीन पग जमीन में ये पूरा हायर प्लेनेटरी लोअर प्लेनेटरी हर चीज़ जो है कवर कर लेगा, इसलिए जो है इसको ये देने की आवश्यकता नहीं है। और शुक्राचार्य कह रहे थे कि तुम जो है, और वास्तव में एक सेंस में देखा जाए तो शुक्राचार्य सही थे, वो कह रहे थे कि भाई प्रैक्टिकल होना चाहिए, दान दो, दान देना मना नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ दे दो। हम भी जाते हैं कहीं पे, अभी कभी भी जैसे मैराथन में या किसी जन्माष्टमी के कलेक्शन के लिए कहीं पे जाते हैं, कि बाहर के कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति है, सो कॉल्ड जो कोई भी पायस व्यक्ति है, उसका यही सोच है कि जो हमें दान देना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ दे दो। आप देखेंगे कोई भी बिजनेसमैन होता है या कुछ भी, तो हर कोई जो है कुछ ना कुछ अपने इनकम का परसेंटेज देना चाहता है, ऐसा नहीं कि कोई पूरा का पूरा जो है दान में देना चाहता है। अभी जैसे पीछे ये डिमोनिटाइजेशन भी हुआ था, तो उसमें भी जो है लोग उस तरह से सेवा नहीं कर रहे थे कि चलो भाई अभी नोटबंदी हो गया, अभी तो बड़ी तंगी है, तो हम उस तरह से जो है सेवा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम अभी जैसे जाते थे मैराथन में, तो लोग को यही बोलते थे कि अगर इस समय सेवा करोगे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपना सब कुछ दे दे। तो शुक्राचार्य समझा रहे हैं उनको कि देखो इतने सारे ब्राह्मण हैं, तुम भी फैमिली के व्यक्ति हो, तुम्हारा पूरा परिवार है, पूरा ये राज्य है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जो है सब कुछ भगवान देव को दे दो, सब कुछ जो है दान दे दो। दान देना मना नहीं है, लेकिन इस तरह से दान देना तो कभी सुना ही नहीं। तो वो कह रहे थे कि तुम जो है झूठ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोल दो कि। और उसके लिए उन्होंने इस पिछले अध्याय में, 19वें अध्याय में आप देखेंगे शुक्राचार्य काफ़ी अलग अलग शास्त्रों को कोट कर रहे हैं, काफ़ी अलग अलग लॉजिक आर्गुमेंट दे रहे हैं, सिर्फ इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कि तुम झूठ बोल सकते हो, तुम जो है बलि महाराज को झूठ बोल दो कि ये पॉसिबल नहीं है, हम आपको ये दे नहीं सकते। और जब उन्होंने ये सुना बलि महाराज, तो उन्होंने कुछ विचार किया और उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि जो, उसके बाद इस अध्याय में जो अभी अध्याय चल रहा है भीष्म अध्याय, उसमें बलि महाराज दूसरे श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक बलि महाराज अलग अलग जो है रीजन बता रहे हैं कि वो क्यों भगवान को हर चीज़ देना चाहते हैं। और आज का श्लोक जो है जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो उस पीछे के श्लोकों में बलि महाराज ने यही बोला कि आप जो, उन्होंने शुक्राचार्य को बोला कि आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने तो जो है इस ब्राह्मण को प्रॉमिस कर चुका हूँ, ये ब्राह्मण के रूप में, हालांकि ये विष्णु है लेकिन ब्राह्मण के रूप में आए हैं, तो मैं इनको बोल चुका हूँ कि मैं जो आपको ये जमीन दूंगा, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। और फिर बलि महाराज कहते हैं कि वो किस तरह से, कि वो विरोचन के पुत्र हैं, प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, उनका वंशज इतना महान है, वो कैसे इनको जो है झूठ बोल सकते। और इसी अध्याय के 4वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो पृथ्वी माता है वो कोई भी हर तरह का भार सहने के लिए तैयार है और वो सहती है, लेकिन सिर्फ उसके एक्सेप्ट दो जुवारे लायक, जो व्यक्ति मतलब झूठा है उसका भार सहन नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये पूरे अलग अलग वो भी बलि महाराज रीजन दे रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि वास्तव में तो सब कुछ भगवान का ही है, या तो मैं भगवान को सब कुछ दे दूं या मृत्यु के समय अपने आप हर चीज़ हर लिया जाएगा। और फिर वो अलग अलग बड़े बड़े पर्सनैलिटीज की बात कर रहे हैं कि किस तरह से दधीचि मुनि इत्यादि जिन्होंने कि इतना बड़ा दान दिया, अपने आप को सेक्रीफाइस किया, तो आज भी उनको जो है लोग गुणगान करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग बलि महाराज भी जो है रीजन दे रहे हैं कि किस लिए जो है वो झूठ नहीं बोल सकते। तो उन्होंने, शुक्राचार्य ने पूरा ये अपना इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए पिछले अध्याय में बोला कि आप झूठ बोल दो, लेकिन यहाँ पे बलि महाराज कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बलि महाराज के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि सत्य संधम, कि वो बिल्कुल जो है अपने वचनों में सत्यनिष्ठ थे बलि महाराज। और वास्तव में आचार्यगण बताते हैं कि वास्तव में आंतरिक रूप से बलि महाराज जो है वो क्या थे, भगवान के प्रेमी भक्त थे। वो वास्तव में भगवान को, जैसे श्री राधा राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, वो वास्तव में भगवान को सब कुछ देना ही चाह रहे थे। और तो आचार्यगण बताते हैं कि एक्सटर्नली वो बाहरी रूप से वो अलग अलग यहाँ पर लॉजिक दे रहे हैं शुक्राचार्य को कि किस लिए उन्हें भगवान को सब कुछ देना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से चूंकि वो भगवान के प्रेमी भक्त थे, और प्रभात जी ने भी यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है कि जो वास्तव में ये पूर्ण भगवान के प्रति जो है प्रेम विकसित कर चुके थे बलि महाराज, तो ये वास्तव में हम देखते हैं कि एक प्रेमी भक्त का लक्षण है कि वो भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहते हैं हर समय और किसी भी समय, कुछ भी, एनी टाइम एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही कैन सेक्रीफाइस फॉर द लॉर्ड। तो ये वास्तव में एक प्रेमी भक्त का, और ये जो उन्होंने यहाँ पर बताया अलग अलग जब रीजन दे रहे थे कि चाहे मैं नरक में चला जाऊँ, चाहे मेरे ऊपर कितना भी बड़ा अपराध हो, पाप हो, लेकिन फिर भी जो है मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं भगवान को सब कुछ देना चाह रहा हूँ, ये रीजन, ये जो लॉजिक है वास्तव में ये बलि महाराज के प्रेम को दर्शाता है कि जब तक कोई प्रेमी भक्त नहीं होगा वो जो है इस तरह से सब कुछ भगवान के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी चंदन यात्रा आने वाली है, किस तरह से जो माधवेंद्र पुरी भगवान के एक प्रेमी भक्त थे, भगवान ने उनके स्वप्न में आदेश दिया, वो वृंदावन में रह रहे थे कि तुम जो है वृंदावन से कहाँ जाओ, पुरी, और वहाँ पर जाकर जो है मेरे लिए चंदन लेकर आओ। माधवेंद्र पुरी तुरंत चले गए, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि अरे ऐसे कैसे, ना तो मैं अभी रास्ते में इतना दूर पैदल कैसे जाऊँ, या चंदन वहाँ से उठाकर कैसे ला सकता हूँ, रास्ते में इतने टोल टैक्स हैं, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, सिर्फ भगवान का आदेश था कि वहाँ से चंदन लेकर आना है, तो वो तुरंत वहाँ से जो है निकल पड़े। और इसी तरह हम देखते हैं कि ब्रज के अंदर भी एक बार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, तो हम जानते हैं कि भगवान को एक बार ये एक लीला आती है कि भगवान को क्या हो गया था, हेडेक, सर दर्द है कि नहीं, ये बहुत ही, ये ऐसे हमारा, हमारे जैसा सर दर्द नहीं था जो डिस्पिन की गोली से ठीक हो जाए। तो ये भगवान का सरदर्द था, बहुत ही दिव्य था। तो जब ये बात पता चली कि भगवान को इस तरह से सरदर्द है, तो एक बार जो तो फिर नारद मुनि जो है भगवान से मिलने आए और उन्होंने पूछा कि भगवान से कि आपका ये सरदर्द कैसे दूर हो सकता है। तो भगवान ने उनको बोला कि अगर कोई मेरे जो शुद्ध भक्त है, अगर उसके चरणों का धूल अगर मेरे सर पर लगाया जाए तो जो है मेरा ये सर ठीक हो सकता है। तो नारद मुनि जो है वो जाते हैं अलग अलग भगवान के भक्तों के पास, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास और इत्यादि अनेक अनेक भक्तों के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किस तरह से द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जो है उनमें उनके सर को दर्द हो रहा है, तो आप कृपया करके अपने चरणों का धूल दीजिए ताकि उनका जो है सर का दर्द ठीक हो सके। तो कोई भी देने को तैयार नहीं होता है, किस लिए? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने चरणों की धूली भगवान को दूं तो क्या होगा, हमें इसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, नरक में। तो फिर जो है नारद मुनि कहाँ पे जाते हैं, ब्रज में जाते हैं। और ब्रज में जब वो ब्रज के अंदर वहाँ की गोपियाँ से मिलते हैं और उनको जब ये बात बताते हैं तो वहाँ की जितनी भी गोपियाँ थी सभी अपने चरणों की धूली देने के लिए तैयार हो जाती है। तब जो है नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर तुम अगर ऐसा करोगे तो इसके लिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो वो ब्रज की गोपियाँ कहती है कि हमें पता है, लेकिन अगर हमारे नरक जाने से अगर भगवान का सर का जो दर्द है वो ठीक हो जाए तो हम नरक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये है प्रेमी भक्तों का लक्षण। और वास्तव में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी तो नरक में चले गए। वो कहाँ रह रहे थे श्रील प्रभुपाद जी? वृंदावन। वृंदावन में सेवा कुंज, सेवा कुंज जो है वो पूरे आध्यात्मिक जगत का हब है, सेंटर है और सबसे सुंदर स्थान माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर रह रहे थे, अपना भजन कर रहे थे, लेकिन वहाँ से वो कहाँ पे गए? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जो कि सबसे तथाकथित, वैसे हमें सुंदर लगता है लेकिन इसको सबसे कंडेम जगह बताया गया, सबसे घृणित जगह था वो। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे गए, वहाँ पे जो उस समय के हिप्पी के लोग थे उन लोगों के बीच में रहे और हम ये सब जानते हैं कि उन्होंने इस तरह से कितना संघर्ष किया। किसके लिए? क्योंकि उनके गुरु का आदेश था भगवान के नाम का, भगवान के इस चीज़ का जो है प्रचार करना था। उसके लिए उन्होंने जो इतना बड़ा कष्ट उठाया, अपने हर चीज़ उन्होंने जो है रिस्क पे लगाया। तो ये वास्तव में एक प्रेमी लक्षण का, प्रेमी भक्तों का लक्षण है। उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जो बलि महाराज हैं, ये वास्तव में आचार्यगण बताते हैं कि ये जो है भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर चुके थे, इसलिए ये भगवान को सब कुछ देना चाह रहे थे। हालांकि बाहरी दृष्टि से देखा जा रहा है कि वो शुक्राचार्य को अलग अलग लॉजिक रीजन दे रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर चुके थे। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया कि सत्य संधम, वो अपने वचन में बिल्कुल अटल थे। और दूसरा जो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने अपने महान शिष्य बलि महाराज को साप दे दिया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान से प्रेरित होकर, वास्तव में अगर हम देखा जाए तो भगवान कई बार अपने अलग अलग भक्तों को, अलग अलग लोगों को प्रेरित करते हैं और ये भागवतम में अलग अलग कई प्रसंगों में इसका वर्णन भी आता है, लेकिन वो किस लिए करते हैं? ताकि जो है भगवान की लीला कंटिन्यू चल सके, या भगवान कोई एक अन्य लीला करना चाह रहे हो, या फिर हमें कुछ सिखाना चाह रहे हो, इसलिए जो भगवान कई बार प्रेरित करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद में किस तरह से जब चारु कुमार, जो कि बिल्कुल मुक्त जीव थे, वो जब जा रहे थे, गए थे एक बार वैकुंठ भगवान विष्णु से मिलने, तो उनको जो है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं जय विजय, उन्होंने उनको रोका और हम देखते हैं कि किस तरह से चार कुमार ने जो है उनको साप दिया। तो वहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में आचार्यगण कि वास्तव में चार कुमार तो बिल्कुल बहुत ही उन्नत स्तर के भक्त थे, तो ऐसा कैसे संभव है कि वो जो है एक द्वारपाल जय विजय को उन्होंने साप दे दिया? तो ये वास्तव में किस लिए? ये भगवान से ही प्रेरित होकर। क्यों? क्योंकि भगवान जो है एक अन्य लीला रचना चाह रहे थे। और भी जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जैसे हम भक्तिभाव कोर्स में पढ़ रहे थे तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में, तो वहाँ भी बता रहे हैं कि किस तरह से वेद व्यास जी जो है पूरा वैदिक ग्रंथों का रचना करने के बाद भी फिर भी वो अंदर से खुश नहीं थे, काफ़ी दुखी थे। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके वो क्यों इतना मोरोस हैं, उनके दुख का क्या कारण है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान स्वयं जो है उनके इस उनके अंदर, हृदय के अंदर जो है इस दुख को उजागर किया। क्यों? ताकि जो है इस भागवतम का जो है जो प्राकट्य हो सके। और इसी भागवतम के अंत में देखेंगे कि किस तरह से इस परीक्षित महाराज को भी जो ब्राह्मण है श्रृंगी, उन्होंने श्राप दिया। और बताते हैं वहाँ पर भी प्रभाजी तात्पर्य में कि ये इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं जो है इस परीक्षित महाराज को वापस अपने धाम में बुलाना चाह रहे थे, और दूसरा रीजन दे रहे हैं क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी से जो है भागवत का उन्होंने पाठ मतलब भागवतम का जो है उन्होंने उजागर किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कई बार अपनी लीला के लिए जो है अलग अलग लोगों को इंस्पायर करते हैं, लेकिन ये एक जनरल प्रिंसिपल नहीं है। ये तो भगवान करते हैं अपनी लीला के लिए, लेकिन एक वास्तव में एक साधारण जो है जीवों के साथ, साधारण एक बद्ध जीव के साथ ऐसा नहीं होता। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है, तो भगवान बताते हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो हम जानते हैं जिस तरह से हम जो है भगवान के जितने डिग्री में जितने भगवान के सरेंडर होंगे, भगवान के शरण में आएंगे, उसी तरह से जो है भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की हमारी इच्छा होगी भगवान उसी तरह से हमें इंस्पायर करेंगे। अगर हमारी इच्छा होगी कि जो है भक्तों का संग करें, भक्ति में लगें, भगवान के नामों का जप करें, मंदिर जाएं, तब जो है भगवान हमें इस तरफ जो है इंस्पायर करेंगे। लेकिन अगर हमारा इच्छा गलत कामों के लिए होगा तो भगवान जो है हमें उसके लिए इंस्पायर करेंगे। तो पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं जैसे लोग कई बार बोलते हैं कि भगवान बुलाएंगे तो मंदिर आ जाएंगे, या फिर जब भगवान की इच्छा होगी तब होगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारी इच्छा होगी तब हमें भगवान इंस्पायर करेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हम सब भक्तों के जीवन में, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए जो है हमें अपने विचार को, हमें अपनी इच्छा को बिल्कुल शुद्ध करना चाहिए, ताकि जो है क्योंकि हम सब भक्ति के पथ पर हैं, और हम सब इस भक्ति के पथ पर तभी सफल हो सकते हैं जब भगवान जो है हमें अंदर से प्रेरित करें, जब भगवान हमें जो है इस हमारा मार्गदर्शन करें, तभी हम जो है इस भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपनी इच्छा को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए प्रभात जी जो है इस तात्पर्य में जो है एक गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का कोट करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते, कि जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये वास्तव में ऐसा हम जानते हैं पूरा भगवद गीता में कि ये जो है ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, 10वें अध्याय का कौन सा श्लोक है, 10। और ये जो 10 10वें अध्याय का 8 से लेकर 11 तक ये जो 4 श्लोक है ये क्या है, चतुर्श्लोकी भगवद गीता कहते हैं इसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये 4 श्लोक हैं, कम से कम इन 4 श्लोकों को तो हमें अपने पूरे जीवन में इनको अच्छे से समझना चाहिए, इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और क्योंकि ये जो 8वां श्लोक है जो हम सर्वस्व प्रभु, उसमें भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान जो है हर किसी चीज़ के स्रोत हैं, और 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बता रहे हैं क्योंकि और उन भगवान को जो किस तरह से हमें पूजा अर्चन करना चाहिए। तो 8वां श्लोक जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो है ये श्लोक हमारा जो है भगवान से संबंध स्थापित करता है, और 9वां श्लोक जो है ये अभिधेय है कि किस तरह से हम जो है भगवान की सेवा में लगे श्रवण कीर्तन के द्वारा। और जो 10वां और 11वां श्लोक है ये प्रयोजन है कि किस तरह से जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में अगर व्रत रहते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं ही बुद्धि देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ सकें। तो आचार्यगण यहाँ पर समझाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम भक्ति के पथ पर हैं, लेकिन हो सकता है कि कई बार, और प्रभात जी भी तात्पर्य में लिखते हैं इस चीज़ को, लेकिन कई बार जो है अगर हम सही रूप से अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो हो सकता है कि हमारे अंदर कोई कमी भी हो, कोई भी मेटेरियल डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन हो तो भगवान जो है उसको पूरा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किस तरह से हो सकता है कोई डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा उतना बुद्धि विकसित ना हो, जैसे कि प्रभात जी इसी श्लोक के गीता के इसी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि हो सकता है कि हम एक प्रमाणिक संस्था में आ जाते हैं, हमें एक प्रमाणिक गुरु का शेल्टर भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी कई बार हम देखते हैं कि अगर हमारा उतना बुद्धि विकसित नहीं है तो जितना हमें भक्ति में प्रगति करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते। तो अगर ये है भी कि मान लीजिए कि हमारे अंदर उतना बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान जो है हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ऐसे अनेक दोष हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में कि हमारे जो दीक्षा गुरु हैं वो बहुत बिजी हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं होता कि हमेशा जो है उनका संग हमारे पास रहे। या फिर वो हो सकता है कि फिजिकली प्रेजेंट ना हो। जब श्रीला प्रभुपाद जी जब इस पृथ्वी से प्रकट हुए थे तो हम देखते हैं कि कितना सारा कन्फ्यूजन फैल गया था कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से जो है भक्ति के नियमों का पालन करा, अलग अलग। और हम देखते हैं कितना क्राइसिस जो है उस समय आ गया था। तो हो सकता है कि ये भी चीज़ें हो, लेकिन अगर हम सही रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान हम सबके हृदय में है, भगवान जो है हमें अंदर से प्रेरित करते हैं और भगवान जो हमें सही मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है कि कोई बोल भी ना सके, कोई सुन भी ना सके, किसी भी प्रकार का दोष हो। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में कि किस तरह से कि एक ब्राह्मण थे जिनको कि श्रीरंगम में वो उनका गुरु का आदेश था कि आप जो है प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय जितने भी श्लोक है सबका जो है प्रतिदिन रूप आप जो है इसका पाठ करो। तो वो ब्राह्मण उतने बुद्धिमान नहीं थे, वो श्लोकों का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनके गुरु को आज्ञा था तो वो प्रतिदिन जो है इस श्लोक को पढ़ते थे और वो सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो वहाँ पर जितने भी तथाकथित जो ब्राह्मण थे वो उनको देखकर उनका मजाक बनाते थे, लेकिन फिर भी जो वो ब्राह्मण थे जब वो गीता पढ़ते थे तो उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो जब एक बार महाप्रभु वहाँ पर आए श्रीरंगम में भगवान के दर्शन करने, तो जब उन्होंने देखा कि किस तरह से ये ब्राह्मण जो है भगवद्गीता के श्लोका का उच्चारण कर रहा है और साथ ही साथ जो है इसके आंखों से आंसू भी निकल रहे, तो वो उस ब्राह्मण के पास गए और उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है गीता पढ़ रहे हो साथ ही साथ आप इतने द्रवित हो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं जब ये देखता हूँ भगवद्गीता में कि भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी लोगों के मालिक हैं, और वो जो है इतने बड़े होने के बाद भी अपने भक्त अर्जुन के लिए क्या कर रहे हैं, रथ चला रहे हैं, तो भगवान के इस भक्त वत्सलता को देखकर जो है वो इतना भावुक हो रहे थे। तो महाप्रभु ने बोला कि वास्तव में आप ही हो जो इस भगवद्गीता के एसेंस को समझे हो। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से देखने में लगता है कि वो उतना बुद्धिमान नहीं थे, उतना सही से उच्चार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो जो है भगवद्गीता के चाहे वो एक भी श्लोक का अर्थ ना समझ पाए हो या एक भी श्लोक ना समझ पाए हो, लेकिन फिर भी जो है उनको क्या हुआ, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुआ, स्वयं श्री भगवान का जो है उनका संग मिला, और फिर भगवान जो है उनको वहाँ से अपने साथ यात्रा में आगे भी ले जाते, तो इस तरह से जो है उनको भगवान का संग भी प्राप्त हुआ। तो पॉइंट ये है कि चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो, लेकिन अगर हम सही रूप से भगवान की भक्ति में लगते हैं, जैसे कि बताया गया कि तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये जो लाइन है ये बताते हैं कि ये हमारे लिए क्या कि हमेशा भगवान की सेवा में लगना कैसे प्रीति पूर्वक। अगर ये काम दो काम हम करते हैं तो अगला जो लाइन है वो किसका काम है, वो भगवान का काम है। तो भगवान क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति दे, तो भगवान जो हमें बुद्धि देंगे ताकि हम भगवान के पास जा सकें। और हम देखते हैं कि इस तरह से भगवान फिर इसी के 10वें श्लोक के बाद 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि स्वयं ऐसे भक्तों का जो मेरे सेवा में लगा हुआ है प्रेम पूर्वक, उसको जो है स्वयं मैं उनके हृदय से जितने भी अंधकार है उसको दूर करता हूँ। और कई बार प्रभात भी ये तात्पर्य में समझाते हैं कि कई बार मायावाद भी जब देखते हैं भक्तों को तो उनको लगते हैं कि ये लोग तो बड़े सेंटिमेंटलिस्ट हैं, भावुक हैं, इनको तो कुछ दर्शन का कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही नाचते हैं, ऐसे ही गाते हैं। और हम देखते हैं कि इवन महाप्रभु की लीला में भी जब महाप्रभु गए थे बनारस, जब वहाँ पर जो मायावादी गुरु थे प्रकाशानंद सरस्वती, जब उन्होंने देखा था महाप्रभु को तो उन्होंने भी यही बोला था कि आप ये क्या भावों की तरह नाचते हो, आप जो है वेदांत का अध्ययन करो, शास्त्रों को समझो। और फिर इवन जगन्नाथपुर में भी देखते हैं कि जब महाप्रभु गए थे वहाँ पर तो वहाँ भी जो मायावाद के गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने भी जो है उनको बोला था कि आप जो है संन्यास तो आपने ले लिया लेकिन आप जो है आपको वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो मायावाद क्या समझते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं उनका जितना भी एक्टिविटी होता है वो सब क्या है, सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर, सब भावुक है। उनको जो है ये ना कुछ दर्शन पता है ना वो दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं, पर इसी तरह से जो है बस नाचते गाते रहते हैं, तो क्या वो ऐसे ही भगवान के पास चले जाएंगे? तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं प्रभात जी कि ऐसे मायावादों को समझाने के लिए भगवान जो है इस श्लोक में कहते हैं कि चाहे वो हो सकता है कि उनके पास उतना बुद्धि ना हो कि वो शास्त्रों को समझ पाए या किसी भी इस तरह का कोई भी उनके अंदर दोष हो कमी हो, लेकिन अगर वो भगवान के भक्ति में लगते हैं प्रेम पूर्वक, तो भगवान क्या कहते हैं कि स्वयं उनके हृदय में जो है प्रकाश का उजागर करते हैं, उनके हृदय में जितने भी अंधकार है उसको जो है स्वयं भगवान दूर करते हैं। तो ये पॉइंट जो है समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सबको इस चीज़ के ऊपर बल देना चाहिए कि किस तरह से भगवान की भक्ति किया जाए, किस ताकि जो है हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सके और भगवान जो है हमें सही मार्गदर्शन कर सके। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे हम जानते हैं यहाँ पर शुक्राचार्य के लिए क्या यूज किया गया कि वो एक क्या थे, रिचुअलिस्टिक, काफ़ी स्मार्ट ब्राह्मण थे, और हम भी जो है इस तरह से रिचुअल में कई बार फंस कर असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ जब वृंदावन में वन के अंदर जब होते हैं, तो एक बार उन सब ग्वाल बालों को क्या लगती है, भूख लगती है, तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमें जो है कुछ खाने को चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, उनको वहाँ के जो तथाकथित ब्राह्मण थे वो लोग क्या कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जाओ आप उनके पास और उनके घर में जाओ और उनको बोलो कि यहाँ पर कृष्ण और बलराम यहाँ पर हैं, तो वो कुछ आपको खाने को देंगे। तो जब जाते हैं वहाँ पर ग्वाल बाल और उस ब्राह्मण से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ब्राह्मण जो है इतने बिजी थे अपने इस यज्ञ में, तथाकथित यज्ञ में, तो फिर उन्होंने उनको सुना भी नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और तो फिर काफ़ी निराश होकर सभी ग्वाल बाल वापिस आए और उन्होंने भगवान को बताया कि वो ब्राह्मण सब तो सभी यज्ञ में व्यस्त हैं और वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो फिर भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मण से नहीं, जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं उनके पास जाओ और उनसे मांगो और वो निश्चित रूप से आपको देंगे। तब जो है दोबारा जो है जो ग्वाल बाल जाते हैं वहाँ पर, और इस बार जो है वो उनकी ब्राह्मण की पत्नियों से रिक्वेस्ट करते हैं, और जब ये ब्राह्मण की पत्नी सुनते हैं कि स्वयं कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हैं, तो वो लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो स्वयं जो उन्होंने जितना भी पकवान उस यज्ञ के लिए बनाया था एक्चुअली, क्योंकि हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का भी यही उद्देश्य है, क्या है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता, और यहाँ पर तो स्वयं कृष्ण बलराम जो है उनसे जो है भोजन मांगने आए, तो उन्होंने जितना भी कुछ बनाया था यज्ञ के लिए सब कुछ लेकर जो है और स्वयं सब कुछ लेकर खुद वो भगवान के पास गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और वो ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि वास्तव में वो भी जो है भगवान के एक प्रेमी भक्त है, जैसे यहाँ पर बलि महाराज, उन्होंने भगवान के बारे में सुन रखा था, सुनने के माध्यम से उन्होंने कृष्ण बलराम के प्रति भगवान के प्रति प्रेम विकसित था, तो इसलिए जब वो सब कुछ भगवान के पास लेकर गए। तो हम यहाँ पर यही इस चीज़ को सीखते हैं कि कई बार जो है हम रिचुअल में फंस कर जो है हम इस चीज़ का असली उद्देश्य, हमारे यज्ञ का क्या असली उद्देश्य है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि और इसी चीज की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है, श्रीमद् भगवद गीता में 4th अध्याय में भगवान जो है अलग अलग प्रकार के यज्ञ का वर्णन करते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग कितने अलग प्रकार के यज्ञ या अलग अलग स्तर के यज्ञ जो जिसमें और अलग अलग वर्ण और आश्रम के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति के लिए यज्ञ की चर्चा करते हैं, जैसे द्रव्यमय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपोमय यज्ञ, ज्ञानमय यज्ञ, इस तरह से अलग अलग यज्ञ के बारे में बताते हैं। और इस यज्ञ का चर्चा करने के बाद इसी अध्याय के 33 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमय याद यज्ञ यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप, कि कह रहे हैं कि जो हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का क्या मतलब हुआ, हो सकता है कि हम सेक्रीफाइस में कुछ चीज़ों को अर्पित करते हैं भगवान को, लेकिन कह रहे हैं कि इसका असली लाभ तब मिलेगा जब हम इस यज्ञ को किस चीज़ में करेंगे, ज्ञान में करेंगे। जब इस यज्ञ को ज्ञान में करेंगे, इस चीज़ को समझते हुए करेंगे किसके लिए कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, तब जो है हमें इसका वास्तव में असली लाभ मिलेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम सही ज्ञान में नहीं कर रहे हैं तो यज्ञ क्या है, किस स्तर पर रह जाएंगे, भौतिक स्तर पर, और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता, और इससे जो है कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाएगा। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना मृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि जो भी हम सैक्रिफाइस करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, हमें उसको किस चीज़ में करना चाहिए, ज्ञान में। अन्यथा हमें जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वो इससे हम वंचित रह जाते हैं। तो अब हमारे लिए यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो भगवान के नाम पर जप यज्ञ हो, या अभी हम यहाँ पर अभी हम सब भगवान के बारे में कथा सुन रहे हैं, या भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, या कोई भी सेवा कर रहे हैं, पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, है कि नहीं, कलेक्शन के लिए जाते हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जितनी भी एक्टिविटी है ये सब क्या है, भक्ति में एक यज्ञ के समान है। और इन सब एक्टिविटी को जो है, इन सब कार्यों को हमें जो है सही ज्ञान में करना बहुत आवश्यक है, तभी हम इसका जो है सही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि वैसे देखा जाए तो एक्टिविटी तो सेम है, बाहर के लोग भी यही एक्टिविटी कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर बाहर कोई दान देता है, दान देने के पीछे उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, कि उसका उसका नाम हो, यश हो, या फिर अगले जन्म में हो सकता है कि उसको उससे ज़्यादा मिले। इस चेतना में भी कोई दान दे सकता है, या कोई दान इस चेतना में भी दे सकता है कि ताकि दान देने से जो है उसका शुद्धिकरण हो। तो एक्टिविटी वही है यहाँ पर, जो हमारा जो उसका जो पर्पस है एक्टिविटी का, जो उसका चेतना है वो मैटर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसी में साधा यज्ञ के बारे में बताया गया है, तो कोई ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हो ताकि मैं स्कॉलर बन सकूँ, विद्वान बन सकूँ, या कोई इस ग्रंथों का अध्ययन कर रहा करने के पीछे किसी का उद्देश्य हो सकता है कि हम जो है भगवान की सही रूप से सेवा कर सकें। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी तो वही है, लेकिन जो इसमें मैटर करता है वो क्या है, हमारी चेतना, या फिर उस एक्टिविटी की पर्पस। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस सोसाइटी का नाम क्या रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो कृष्ण चेतना है ये बहुत आवश्यक है, और इसीलिए इसको जो है इस भगवद्गीता के जो इस चौथे अध्याय के 16 नंबर से 24 नंबर श्लोक है, इसको बताया गया है कि कर्म तत्व। कर्म तत्व का मतलब हुआ कि फिलोसफी ऑफ कर्म। फिलोसफी ऑफ कर्म का मतलब हुआ कि हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कार्य कैसे करना है, या किसके लिए करना है, किस तरह से करना चाहिए, कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है। अगर इस तरह से हम ज्ञान में कोई कार्य करेंगे तभी जो है हम अपने आप को भगवान से हमेशा कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं, और इसी चेतना में कार्य करने से भगवान जो है हमेशा हमारा जो है मार्गदर्शन। क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि वैसे तो भगवान सबके हृदय में है, भगवान तो सबको गाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भक्त है, अगर कोई इस स्थिति में भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसको जो है भगवान जो है इस तरह का गाइडेंस करते हैं कि वो जो है भगवान के पास जा सके। तो इसलिए जो है ये चीज़ बहुत आवश्यक है समझना कि हम जो भी चीज़ करें, जो भी कोई भी सेवा हो, साधना हो, कुछ भी हो, भक्ति के हम कोई भी नियमों का पालन करें, तो उसका उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। और अन्यथा नहीं तो क्या होगा कि अगर इस तरह से रिचुअल, क्योंकि हम इसको कई बार समय के साथ इसको भी काफ़ी रिचुअल बना देते हैं, इसलिए मान लीजिए कई बार जैसे कि बोलते हैं ना एकदम भेड़ चाल, चलो 20-25 लोग मंगल आरती में खड़े हैं तो हम भी आके यहाँ पे खड़े जाते हैं, या फिर भगवान का नाम लेना है इसलिए लेते हैं, या कोई भी हो सकता है कि हम कोई भी सेवा कर रहे हो पर उसका जो है, और हमारी चेतना से हम कहीं और हो, जब कर रहे हो हमारा मन कहीं और होता है। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और हर विधि को जितना भी सेवा साधना हो उसको सही ज्ञान में स्थित होकर उसको करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम भगवान के कृपा को, तभी हम भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और इसी चीज़ की चर्चा जो है और भगवद्गीता के और भी 18वें अध्याय में भी हुआ है इस चीज़ की चर्चा। और हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज़ और कि उसके बाद मान लीजिए कि चाहे कैसी भी स्थिति हो तो भगवान जो है हमेशा जो है हमें मदद करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वली महाराज के सामने कितनी चुनौती थी, है कि नहीं, स्वयं उनका गुरु था, और वो गुरु कोई साधारण गुरु नहीं थे, शुक्राचार्य भगवान जो है दसवें अध्याय में कहते हैं, जब अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, शुक्राचार्य भगवान की एक विभूति है, और इतने सारे वहाँ पर ब्राह्मण भी थे और सब कुछ था, और इसके बाद भी जो है एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान का आदेश है और एक तरफ उनके गुरु का आदेश है, तो बलि महाराज के लिए जो है ये चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट था कि वो क्या करें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें कि भगवान की आज्ञा का पालन करें। और यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान के इंस्पिरेशन से, भगवान के मतलब भगवान ने इनको इंस्पायर किया बलि महाराज को कि वो सब कुछ भगवान को देने के लिए तैयार हो गए, और वहीं पर शुक्राचार्य थे जिनको भगवान जो है अंदर से इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम जो है इसको बलि महाराज को साफ दे दो। तो इस तरह से चाहे कोई भी चुनौतीपूर्ण स्थिति हो, अगर हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं तो भगवान जो है हमेशा हमारा जो है सही मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम जो है भगवान को प्राप्त कर सके। और इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज भी कहते थे कि कोई भी डिसीजन हो, जैसे यहाँ पर बलि महाराज को डिसीजन लेना था, उसी तरह से हम भी देखते हैं अपने जीवन में, अभी रोज भी कई बार हम भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कई सारी चीज़ें। तो अगर हम इस तरह से भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो भगवान हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है क्या करना चाहिए, भक्तों को जो है 16 माला जो है पूरा सबसे पहले 16 माला का जो है जाप करना चाहिए। और एक बार यही चीज़ जो है, एक बार हम गए थे ऐसे चार धाम की यात्रा पे भक्ति भागवत महाराज के साथ, तो महाराज एक बार वहाँ पर यही बता रहे थे कि जो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अगर कोई मीटिंग में जाता है कि नहीं, तो उसको जो है अपना 16 माला पूरा करके जाना चाहिए, ताकि मीटिंग में जो है कई अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं और ये डिसीजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं भक्ति में। इस डिसीजन से सारा भक्तों का जीवन या फिर और अलग अलग भगवान की सेवाएं जो है इसी डिसीजन पर निर्भर होता है। तो इसलिए जो है हमें हमेशा जो है 16 माला करने के बाद भी किसी मीटिंग में जाना चाहिए। और कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी 16 माला पूरी नहीं हुई हो तो तुम उस मीटिंग में मत जाओ, और जो भी उस मीटिंग का डिसीजन है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो है वास्तव में कोई, और भगवान जो है भगवद्गीता के 18वें अध्याय में कहते भी हैं कि कोई भी कार्य को सफल होने के 5 कारण बताते हैं, जिसमें कि अल्टीमेट किसके हाथ में है सब कुछ, भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में। तो नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं होगा तो क्या होगा कि हम जो है हमें लगेगा कि जितना भी कार्य हो रहा है या जो भी डिसीजन लिया जा रहा है या जो भी हम अपने भक्ति के कार्य में सफल हो रहे हैं वो किसके प्रयास से है, मेरे प्रयास से हो रहा है कि नहीं। इसलिए जो है हमें ऐसा नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, ये भक्तों का वास्तव में ये मानसिकता होती है कि हमें एक्सटर्नल रूप से प्रयास करना चाहिए, लेकिन आंतरिक रूप से जो है हमें हमेशा जो है भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए, भगवान के से हमेशा जो है वेल कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो सेंक्शन करते हैं वो कौन है, परमात्मा ही है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं यहाँ पर हम सब जो एक जैसे आज बलि महाराज जो है बिल्कुल भगवान के लिए हर चीज़ निछावर करते हैं, तो हम भी यहाँ पर भक्ति में आए हैं, और हर कोई अपने जैसे भक्ति के अलग अलग स्टेज होते हैं, लेकिन श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, हालांकि बलि महाराज तो यहाँ पर प्रेम की अवस्था में है, भगवान के पूर्ण शरणागत हैं, तो हो सकता है कि हम में से भी लोग अलग अलग भक्ति के स्तर पे हैं, अलग अलग इस जो ये जो प्रोसेस ऑफ सरेंडर है भगवान के प्रति शरणागत की जो ये विधि है उसमें हो सकता है कि हम अलग अलग स्तर पे हों, लेकिन हम सबको और इस चीज़ के लिए भगवान जो है भगवद्गीता में इस चीज़ के ऊपर ही बताते हैं कि 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में निर्माण मोह जित संग दोष, भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है सरेंडर का सबसे पहला क्या है कारण, कौन व्यक्ति सरेंडर कर सकता है, जो बिल्कुल जो मैं और मेरा के कंसेप्शन से, जो बिल्कुल प्राइड से मुक्त हो, जो बिल्कुल घमंड से अहंकार से मुक्त हो। तो प्रभाजी तात्पर्य में कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सरेंडर, जब तक ये होने से जो है हम भगवान के इस ये जो प्रोसेस ऑफ सरेंडर है, भगवान के प्रति शरणागत की विधि है, इसमें जो है पहला कदम रख सकते हैं तब जब हम अपने आप को बिल्कुल जो है असमर्थ मानेंगे, अपने आप को बिल्कुल भगवान पे जो है हमेशा निर्भर रहेंगे, तभी जो है हम इस भगवान के प्रति शरणागत हो सकते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक से मुझे ये कुछ चीज़ें समझ आई कि किस तरह से हमें जो है रिचुअल से बचना चाहिए, और सही जितने भी एक्टिविटी है उसको सही ज्ञान में स्थित होकर करना चाहिए ताकि हम इसका जो है सही लाभ उठा सके, भगवान की कृपा को अपनी तरफ आकर्षित कर सके और इस तरह से भगवान से वेल कनेक्टेड रहें और भगवान जो है हमेशा हमारे इस विधि में जो है, इस भक्ति की विधि में, शरणागत की विधि में, भगवान को प्राप्त करने की विधि में हमेशा जो है हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्ण। तो एनी करेक्शन, अगर कोई कमेंट होता।
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया। श्लोक में खासकर देव प्रहिता और सत्य संधम में मेरा एक प्रश्न था। सत्य संधम परपट में है कि बलि महाराज ने भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लिया था, तो बलि महाराज ने किस प्रोसेस के द्वारा, किस विधि के द्वारा प्रेम विकसित किया था, कुछ इस बारे में बताना चाहिए।
एक्चुअली बलि महाराज जो है किसके जो पर हम जानते हैं कि बलि महाराज किनके वंश में है, प्रहलाद महाराज के वंश में। और प्रहलाद महाराज को भगवान ने जो है प्रॉमिस किया था, क्या किया था कि आपके कुल में जितने भी लोग आएंगे उनकी मैं हमेशा रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर बलि महाराज हालांकि शुक्राचार्य के संग में है कि नहीं, और इस तरह की स्थिति में है, तो ये आचार्यगण समझाते हैं इस चीज़ को कि भगवान जो है, जो कि प्रहलाद महाराज को उन्होंने वचन दिया था, और इसलिए भगवान जो है उनको भगवान की कृपा से ही ये सब संभव हुआ है। इसलिए भगवान ने उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि तुम सब कुछ मुझे दे दो। ये भगवान की कृपा से ही बलि महाराज जो है भगवान के प्रति प्रेम विकसित किए थे। और फिर हम देखते हैं कि और आगे और जो उन्होंने, और इस चीज़ की पुष्टि कैसे होती है कि वो जो इसी अध्याय में अलग अलग जो रीजन देते हैं, लॉजिक देते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ये समझ आया कि कौन से उन्होंने ऐसे विधि का पालन किया जिससे भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर सका। मुझे तो ये लग रहा है कि जो जो मैं सुना था एक लेक्चर में, कि बाकी और कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं।
धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे श्लोक में आया कि बलि महाराज का गुणगान किया हुआ है, सत्य संकल्प सत्य संधम, कि वो इतने सत्य में अडिक्ट थे कि उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया, और इस चीज़ के लिए उनका शास्त्रों में इतना गुणगान है। और दूसरी तरफ देखते हैं युधिष्ठिर महाराज का जो केस, कि उन्होंने जीवन में एक बार सत्य बोलने के लिए भगवान की आज्ञा को डिनाई किया, और उसकी वजह से उनका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट रहा। तो अगर इन दोनों में तुलना करें किन परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ भी जो उनके गुरु थे बहुत शक्तिशाली थे, तो सत्य को किस हद तक उसका पालन करना है और कहाँ पर उसको चेंज भी किया जा सकता है, तो इसमें क्या पैरामीटर
क्या? हमें तो हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, ये चीज़ जो है समझना चाहिए। जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे शास्त्रों में और भी अलग अलग इसका उदाहरण आता है, जैसे अभी हम पीछे एक भगवद्गीता मैराथन पे गए थे, तो कई बार लोग इस तरह से जो तथाकथित जो सोशल मोरल एथिकल वैल्यूज है इसके ऊपर लोग बोलते हैं कि ऐसे, लेकिन वास्तव में इस चीज़ का उद्देश्य समझना चाहिए। कोई हमें जो है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो है सत्य का सामना करना चाहिए। भगवान जो है अलग अलग लीलाओं से अलग अलग पॉइंट हमें सिखाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यही है कि हर स्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए। और यहाँ पे भी देखते हैं कि हालांकि वो गुरु का अवज्ञा कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सत्य संधम, कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जो परो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म क्या है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। ये जो है इस चीज़ को स्थापित करने के लिए यहाँ पे जो है उनके लिए सुखदेव गोस्वामी ने इस शब्द का यूज किया। हालांकि वो भारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगता है कि गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु की अवज्ञा क्यों कर रहे हैं, भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए या भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, तो इस केस में। लेकिन नहीं तो जनरल तो इस कलयुग में बताया जाता है कि एक ही जो धर्म का स्तंभ रह चुके हैं वो क्या है, सत्य। तो इसलिए हमें तो, हम भक्तों को तो हमेशा सत्य का सामना कर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।